तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का विचार कर रहे हैं। 70 श्लोक तो हो गया, 71वां भी हो गया। अब हम तो एक दिन के लिए आए, आगे बढ़ा भी देंगे तब भी जो है महाराज जी आएंगे वो वहीं से ही लेंगे और उचित वही है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा पीछे चलना चाहिए, देख ले कि हम जो है पीछे का भूल तो नहीं गए, क्योंकि गुजराती में कहावत है, बोलो, आंधड़ो वणे ने पाछड़ वाछरडो चावे, आंधड़ो वणे ने पाछड़ वाछरडो चावे। समझ में आया नहीं? अंधा जो है वो रस्सी बुन रहा है, रस्सी बुन तो रहा है, जितनी बुने उतनी जो है वो गाय का बच्चा है वो चबा जाए। अब वो जो है बूनता चला है, वो चाहे कहते इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी। अब कहां से इकट्ठा होगा भाई? वो जो गाय का बच्चा है वो जो है उसको चबा करके नष्ट कर दे रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है आगे आगे जो है बूनते चले जाए और पीछे छूट जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें उपासना की महिमा है। किसकी? ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है। क्यों उपासना बताई जा रही है, किसके लिए बताई जा रही है, ये पता है आप लोगों को? जो मध्यम अधिकारी है, या ऐसा कहे, मध्यम अधिकारी नहीं कहना है, तो ऐसा कहे कि जिसको श्रवण मात्र से जिसको महावाक्य का जो अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान, महावाक्य का जो अर्थ अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष किसे होगा? महावाक्य के द्वारा होगा कि नहीं? तो गुरु जी ने महावाक्य का उपदेश दिया, तत्वमसी महावाक्य का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म भाव की प्राप्ति। और वो कब होगा? तत् और त्वम का विवेचन किया है, तत् और त्वम का जो पदार्थ है उसका बोध है, तब जो है तत्वमसी महावाक्य के द्वारा अहम् ब्रह्मास्मि अनुभव होगा। किंतु महावाक्य का अर्थ जो है अपरोक्ष ज्ञान पूर्वक ब्रह्म भाव लक्षण जो मोक्ष उस महावाक्य के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, वो जो है सुनने पर भी जिसको बुद्धि मांद्यादि दोष के कारण नहीं हुआ, जैसे हम लोग ही है, और दृष्टांत कहां ले? हम लोग है, उपनिषद का श्रवण कर रहे हैं, श्रुतोपनिषद है हम लोग, कैसे? श्रुतोपनिषद है, उपनिषद श्रवण कर ही रहे, फिर भी जो है अपरोक्ष प्रमिति उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये जो तत्वमसी जो महावाक्य का अप्रमाण है क्या, इसलिए नहीं हो रही है? ऐसा नहीं है, ये परम प्रमाण है, किंतु फिर भी नहीं होने का कारण है बुद्धि मांद्य। बुद्धिमान जी समझ में है, बुद्धि की मंदता, बुद्धि की मंदता के कारण नहीं होता है। और बुद्धि की मंदता का अभिप्राय है मल और विक्षेप का होना। ऐसे मल मत लीजिए, क्योंकि ये तो विविधिषु के लिए है, और विविधिषु वो है जो कर्मानुष्ठान कर चुका है, मल जिसका निवृत्त हो गया है उसके लिए ये बात है। मल दोष को कर्मानुष्ठान से निवृत्त होने के बाद, विवेक आदि साधन का उदय होने के पश्चात परमहंस परिव्राजक भाव धारण कर लिया है, वेदांत का श्रवण कर रहा है, फिर भी जो है अपरोक्ष प्रमिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो ऐसे विविधिषु के लिए यहां उपासना बताई जा रही है। उपनिषदों में उपासना का विधान है। और इस प्रकरण में उसके बारे में विचार किया गया है। मोक्ष फलक उपासना, कैसी उपासना? मोक्ष फलक उपासना यानी मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली उपासना। उपासना से मोक्ष होगा कि नहीं होगा, क्या कहेंगे? हैं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उपासना जो है वो अपरोक्ष प्रमिति के उत्पादन के द्वारा वो मोक्ष की फलक होगी। इसलिए ब्रह्म की उपासना यहां पर बताई जा रही है, इसका विचार यहां पर किया जा रहा है। दोनों उपास्य, सगुण और निर्गुण। अब जो है उपासना यहां पर करनी, और ये आप चीज देखनी है तो जो है ध्यान दीप प्रकरण का जो है प्रारंभ आप निकालिए, उससे थोड़ा आपको बता देते हैं। ध्यान दीप प्रकरण का जो प्रारंभ है, जहां से ध्यान दीप प्रकरण शुरू हुआ है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक ने, उसको थोड़ा करवा देते, आपको पता चल जाएगा। मिला सबको? देखिए उसमें सबसे पहले कहा कि इह तावद वेदांत शास्त्रे नित्य नित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्नस्य सम्यक श्रवण मनन निदिध्यासना अनुष्ठानवतः, जो वेदांत शास्त्र में जैसे कि कहा है नित्य अनित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय, कर्मानुष्ठान के बाद की बात है। कर्मानुष्ठान जो कर चुका, कर्मानुष्ठान से मल नाम का दोष जिसका निवृत्त हो गया है, और इसी के कारण साधन चतुष्टय संपन्न जो हो गया है, सर्वकर्म का संन्यास जिन्होंने कर चुका है, सर्वकर्म का संन्यास जो कर चुका है, और संन्यास के बाद जो है सम्यक श्रवण मनन निदिध्यासन अनुष्ठानवतः, अब जो है वो श्रवणादि साधन कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रवणादि साधन का अनुष्ठान कर रहा है, और श्रवणादि का साधन के फल स्वरूप ही महावाक्य का जो अर्थ है उसका परोक्ष ज्ञान होता है। तो तत्त्वमसि महावाक्य का जो तत् और त्वम पद है, उस तत् और त्वम पदार्थ का विवेचन ही तो श्रवणादि से होगा कि नहीं? वेदांत का श्रवण के करने पर क्या होगा? तत् और उत्तम पदार्थ का विवेचन पूर्वक ज्ञान, ठीक है कि? अब आप जो है तत् का भी विवेचन आपने कर लिया, त्वम का भी, तब जाकर के कहेंगे तत्त्वम असि, तत्त्व का, तत् का बोध है, त्वम का भी बोध है, तब जाकर के तत्त्वमसि महावाक्यार्थ जो है वो ब्रह्म भाव उसका अनुभव होगा। इसलिए अनुष्ठानवतः तत्त्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक तत् और त्वम पदार्थ का, तत्पद और त्वम पद का जो विवेचन पूर्वक श्रवणादि से विवेचन किया और विवेचन पूर्वक महावाक्य का जो अर्थ, महावाक्यार्थ, महावाक्य का जो अर्थ अपरोक्ष ज्ञानेन ब्रह्म भाव लक्षण मोक्षः, ये महावाक्य का अर्थ है। तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ क्या है? अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव, मैं ब्रह्म हूं, उसको कहेंगे ब्रह्म भाव, यही लक्षण है मोक्ष का, उसको कहेंगे ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष। भवति होता है ये इति प्रतिपादितम, ये जो है प्रतिपादन कर दिया वेदांत में भी और कुटस्थ दीप में भी, आप ले लीजिए कुटस्थ दीप में ये हो गया, समझ लीजिए। अब जो है यहां से आगे तत्र तत्र श्रुत उपनिषद कस्य अपि, देखो तत्र अब जो है श्रुतोपनिषद यानी कि जिन्होंने उपनिषद का श्रवण किया है, फिर भी श्रुत उपनिषद कस्य अपि, उपनिषद का श्रवण करने के बाद भी बुद्धिमांद्यादीना का अर्थ है बुद्धिमांद्यादी दोष के कारण, केनचित प्रतिबंधे न, कोई प्रतिबंध से, प्रतिबंध तो कई एक प्रकार के होते, सबसे बड़े प्रतिबंध तो है असंभावना और विपरीत भावना, ये प्रतिबंध है कि नहीं, असंभावना और विपरीत भावना प्रतिबंध। तो केनचित प्रतिबंधे न वाक्यार्थ विषय, वाक्यार्थ विषय यानी तत्त्वमसि महावाक्य का जो अर्थ, वो विषय महावाक्यार्थ विषय, महावाक्य का अर्थ है अपरोक्ष ज्ञान पूर्वक ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष, ये महावाक्य का अर्थ है। और वो जो है प्रतिबंध के द्वारा नहीं हुआ है, अपरोक्ष प्रमिति अनुत्पन्नौ अनुत्पत्तौ, अपरोक्ष जो प्रमिति है वो उत्पन्न नहीं हुई है। महावाक्य का जो अर्थ है विषय है अपरोक्ष प्रमिति, किंतु बुद्धि मांद्यादि दोष के कारण, केनचित किसी प्रतिबंध के कारण वो उत्पन्न नहीं हुई है। तो अनुत्पत्तौ सत्याम, अनुत्पन्न होने पर अब क्या करेंगे, तद उत्पादन द्वारा, तद उत्पादन में तद का अर्थ है अपरोक्ष प्रमिति, तद का अर्थ है अपरोक्ष प्रमिति, उत्पादन द्वारा, अपरोक्ष प्रमिति उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनानी, उपासनानी दी दर्शयीशु आदौ, तो मोक्ष फलक उपासना दिखा रहे हैं, दी दर्शयीशु दिखाने की इच्छा से। मोक्ष फलक उपासना क्या करेगी? मोक्ष फलक उपासना के द्वारा प्रतिबंध की निवृत्ति होगी, बुद्धिमांद्यादि की निवृत्ति होगी, और निवृत्ति होने पर अपरोक्ष प्रमिति की उत्पत्ति होगी, ठीक है कि नहीं? इसलिए कहा तद उत्पादन द्वारा, उत्पादन के माध्यम से मोक्ष फलक उपासनानी, अपरोक्ष प्रमिति की उत्पत्ति से मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष ही फल है जिस उपासनाओं का। ऐसी उपासनाएं दी दर्शयिषु दिखाने की इच्छा से पंचदशीकार आदौ सबसे पहले तावत सदृष्टान्तम ब्रह्म तत्व उपासनायापि मोक्षो भवति इति प्रतिजानीते। हाँ आदौ है तो वो विसर्ग हो जाएगा, दी दर्शयी शुहु है, दी दर्शयी शु ये जो है ना निजंत रूप है निजंत। हाँ तो ये जो है निजंत रूप है, किससे हो जाता है आदव तावत दिखाने की इच्छा, इच्छार्थक जो है प्रत्यय है निजंत प्रत्यय। तावत सदृष्टान्तम, देखो ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष होता है ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि नहीं। ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष होता है यानी साक्षात नहीं समझना। हाँ तो इससे पहले जो है, अब जो है काफी बात बीच में हुई, सबसे पहले तो यहां पर यह बात सिद्ध की है कि ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष भवती, ये प्रति जानीते यानी ये जो है दिखा रहे हैं सबसे पहले। और ब्रह्म तत्व की उपासना मोक्ष फलक है, उससे मोक्ष होता है या उसमें समझे कि मोक्ष में इनका विनियोग है, उसको बताने के लिए बहुत बढ़िया बात आगे सबसे पहले बताई। यदि आपका ब्रह्म संवादी है, ब्रह्म 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 दो प्रकार का होता है ना, संवादी और विसंवादी, दो प्रकार का ब्रह्म हुआ करता है। यदि ब्रह्म आपका संवादी है तो आपको फल मिलेगा। ब्रह्म यदि संवादी है और आप वो चीज लेने के लिए गए तो जो है आपको फल मिलेगा, और विसंवादी है तो नहीं मिलेगा। विसंवादी है तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, ये बात है। तो संवादी ब्रह्म और विसंवादी ब्रह्म के प्रतिपादन से ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष जो है ये उपनिषद में बताया है। कहां पे बताया है तो पंचदशीकार ने कहा तापनीय उपनिषद में, किसमें? तापनीय उपनिषद, नृसिंह तापनीय उपनिषद है वो, प्रथम श्लोक में बताया। और उसका विवेचन में आगे एक बहुत बढ़िया दृष्टांत वही सुना देता हूं, देखो दृष्टांत सुना देता हूं, संवादी ब्रह्म और विसंवादी ब्रह्म, दूसरे श्लोक में देखो वार्तिक है ये पंचदशीकार जो है वार्तिक कार ने इसको कहा है वो ले आ रहे, देखो मणि प्रदीप प्रभया प्रभयोर मणिबुद्ध्याभिधावतो मिथ्या ज्ञाना विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियां प्रति। देखो इसमें यह है, जैसे एक मंदिर है, मंदिर ठीक है कि नहीं? वार्तिक का व्याख्यान फिर तृतीय श्लोक में कहा, देखो किसी मंदिर में अपवर्क के अंदर दीप रखा हुआ है, संवादी और विसंवादी प्रवृत्ति क्या है ये बता रहे। किसी मंदिर में अपवर्क के अंदर दीप रखा है, अपवर्क समझ में आया? कवर, दीप जो है जिसमें रखा जाता है उसको कहते हैं अपवर्क। आजकल जैसे कांच वगैरह का नहीं रखते, कांच वगैरह का भी रखते हैं, या धातु का हो तो छिद्र वगैरह रहते हैं, छिद्र वगैरह रहते हैं। या ये ले लीजिए घड़ा ले लीजिए, गरबा ले लीजिए, गरबा गुजराती में जो है गरबा होता है एक में वो, और उसका जो मुख है वो थोड़ा सा कम है, ऐसा ऐसा गरबा लेना, जिसमें उसमें दीप रखा हुआ है, वो घड़े में छिद्र वाले घड़े के अंदर दीप रखा हुआ है, अपवरक के अंतर दीप है, और उसकी जो प्रभा है वो बाहर निकल करके, वो उनका जो छिद्र है थोड़ा सा कम होने के कारण उसमें जो प्रभा निकल रही है ने, वो प्रभा रत्न सदृश दिख रही है, क्योंकि छिद्र जो है वो गोल है, छिद्र गोल है, तो उससे जो प्रभा निकलेगी वो भी कैसे निकलेगी, गोल जैसे निकलेगी, तो रत्नमिव वर्तुल उपलब्धते, वर्तुल जैसे वो गोल सी दिख रही है, तो दूर से लग रहा है कि वहां गोल सा रत्न पड़ा हुआ है, मणि पड़ा हुआ है, वो रत्नमिव वर्तुल उपलब्धते। और एक ये बात है, ये फिर दूसरा, और एक जो है अपरक पड़ा हुआ है अन्य मंदिर में, दूसरे मंदिर में अपवरक के अंदर एक रत्न पड़ा हुआ, अपवरक के अंदर एक रत्न पड़ा हुआ है, वस्तुसत रत्न, रत्न पड़ा हुआ है, वो भी ऐसे घड़े के अंदर ही, ठीक है कि नहीं, दोनों क्या है, रत्न भी वो घड़े के अंदर पड़ा हुआ, तो जो है वो उनको भी छिद्र वाला ही समझ लीजिए, तो वो जो है अपवरक के अंदर जो रत्न पड़ा हुआ है उसकी भी जो प्रभा है वो बाहर निकल रही है, वो उसकी प्रभा भी बाहर निकल रही है, वो दीप की प्रभा सदृश लग रही है, वो दीप की जैसे दीप में निकल रही थी वैसे ही, तो वो जो है रत्न समान वो भी दिख रही है, उनका भी जो गोल गोलाकार होने से प्रकाश वो भी कैसा दिख रहा है, रत्न समान। ये दो ऐसे घड़े पड़े हुए अलग अलग मंदिर में, तो जो पहले वाला दृष्टांत जिसमें वस्तुसद दीप ही है, वस्तुसद दीप ही रखा हुआ है, किंतु उसमें से निकलने वाली जो किरण है वो रत्न सदृश दिख रही है, तो दूर से किसने देखा उनको लगा कि अरे यहां तो रत्न पड़ा हुआ है, मणि पड़ा हुआ है, वो भी लेने के लिए गया। और जो है जिसमें वस्तुसत मणि रखा हुआ है, उस मणि की भी जो बाहर निकलने वाली प्रभा है वो भी मणि के सदृश ही दिख रही है, रत्न, उनको भी भ्रम हुआ कि वहां तो दीप है, उनको दिख रहा है दीप, और लेकिन वहां जो है दीप में जो है मणि का प्रकाश दिख रहा है, इसलिए उसको रत्न समझ करके वो भी दौड़ा। दोनों जो है रत्न समझ करके ही लेने के लिए दौड़े हैं, लेकिन जिस घड़े में दीप रखा हुआ है तो उसको वहां मणि नहीं मिला, उसमें भी मणि बुद्धि हुई है किंतु मणि नहीं मिला, उसको कहते हैं विसंवादी प्रवृत्ति। और वो दूसरा जो है रत्न समझ करके जो वहां लेने के लिए जो गया, तो वहां तो उनको वस्तुसत रत्न मिल गया, भ्रांति में भी, दोनों भ्रांति है, मणि की भ्रांति से ही दोनों की प्रवृत्ति हुई, किंतु उसको वहां मणि मिल गया, तो उसको कहते हैं संवादी प्रवृत्ति। यदि ब्रह्म उपासना जो है, उपासना में भी अब घटा लीजिए, उपासना में, उपासना भी जो है ब्रह्म फलक बताइए कि नहीं, उपासना भी ब्रह्म फलक बताइए, तो यदि संवादी प्रवृत्ति है तो जैसे वहां मणि मिल गया वैसे ब्रह्म की उपासना भी जो है ब्रह्म फल को देने वाली है, इसलिए उपासना के द्वारा जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उपासना के द्वारा साक्षात नहीं समझना। हाँ ये साधन मान करके कैसे ये बात भी आपको दिखा देते हैं, वो ये चीज को भी आपको दिखा दे। आवरण भंग तो ब्रह्म ज्ञान से होगा। 64वां श्लोक निकाले देखो 64। इसमें सगुण और निर्गुण दोनों की बात करते करते यहां तक पहुंचे कि ननु निर्गुण उपासनम कथम अनुष्ठेयम। निर्गुण उपासना जो है वो अनुष्ठेय कैसे हो सकती है, इस प्रकार की शंका है। तो उसके उत्तर में बताया 64वें, अनुष्ठान प्रकारोस्याह पंचीकरण ईरितः, ये उत्तर हुआ। निर्गुण उपासना जो है किस प्रकार से अनुष्ठेय है, तो कहा कि अनुष्ठान प्रकारो अस्याह पंचीकरण ईरितः। अस्याह पंचीकरण के प्रकार से उसके अनुष्ठान का प्रकार बताया है। अब जो है ये कहा कि जब निर्गुण उपासना जो है वो पंचीकरण ईरितः अस्याह अनुष्ठान प्रकारः ये कहा है, तो फिर प्रश्न उठाया कि ननु एतद् उपासनम ज्ञान साधनम एव। एतद् उपासनम यानी निर्गुण उपासना जो है वो तो ज्ञान का साधन है, ब्रह्म फलक नहीं है। जैसा आपने निर्गुण उपासना का जो प्रकार बताया वो प्रकार तो पूर्व पक्षी कह रहे ब्रह्म फलक नहीं है, वो तो निर्गुण उपासना जो है वो ब्रह्म फलक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया और कहा कि एतद् उपासनम ज्ञान साधनम एवं न मुक्ति साधनम। ये जो आपने निर्गुण उपासना का जो प्रकार बताया वो तो ज्ञान का साधन है, वो मुक्ति का साधन नहीं है। किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांति क्या कहते हैं? इष्टापत्ति है वो। न मुक्ति साधनम इति आशंक्य ब्रह्म तत्व उपास उपास्त्यापि मुच्यते इति वदताम अस्माकम् अनुकूलम् इति आह ज्ञान साधनम इति। 64वें श्लोक के उत्तरार्ध में देखो, ज्ञान साधनम एतत् चेत् न इति, ये शंका है इतनी 64वें श्लोक में। ज्ञान साधनम एतत् चेत् पूर्व पक्षी कह रहे जो पंचीकरण ईरिता ये जो अनुष्ठान का प्रकार बताया सिद्धांति ने, ठीक है कि नहीं, निर्गुण उपासना का प्रकार बताया 64वें श्लोक के पूर्वार्ध में। तो पूर्व पक्ष ने जो है 64वें श्लोक के उत्तरार्ध में ज्ञान साधनम एतत् चेत् न, यहां तक जो है पूर्व पक्ष ने शंका के कि नहीं, ये तो जैसे आपने निर्गुण उपासना का जो प्रकार बताया वो तो ज्ञान का साधन है, वो मुक्ति का साधन नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे इति चेत् न इति केन अत्रवारितम इति चेत् न, ऐसा अनुष्ठान पूर्व पक्ष कहेंगे कि ये ज्ञान का मुक्ति का साधन नहीं है, ज्ञान का साधन है, इति चेत् न ऐसा पूर्व पक्ष कहे, तो कहा इति केन अत्रवारितम, ये जो है सिद्धांति का पक्ष है। सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म तत्व की उपासना से देखो न इति ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते इति वदताम, जो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व की उपासना से मोक्ष होता है ऐसा हम कहने वाले जो है वो हमारे लिए तो वो चीज अनुकूल है। कौन कह रहे? सिद्धांति कह रहे हैं कि ये बात तो हमारे लिए अनुकूल है। सिद्धांति कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व की उपासना से मोक्ष होता है, और पूर्व पक्ष ने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्म तत्व की उपासना ज्ञान का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। तो सिद्धांति कहते हम भी यही कह रहे हैं। सिद्धांति का कहना है कि जो है हम ये नहीं कह रहे कि वो साक्षात मुक्ति का साधन है, साक्षात मुक्ति का साधन हम ये नहीं कह रहे, ज्ञान का अपलाभ नहीं कर रहे, किंतु ज्ञान का साधन, साधन रूप से वो जो है ब्रह्म फलक है वो, ठीक है कि नहीं। विक्षेप की निवृत्ति करके वो साधन है, मुक्ति का साधन। ये तो सिद्धांत है कि नहीं, मुख्य साक्षात नहीं। ज्ञान का साधन हम यही कह रहे, ज्ञान साधनम एव, ज्ञान का साधन है वो, साक्षात मोक्ष फलक नहीं है। समाधि प्रवृत्ति से वो ज्ञान का साधन है वो, अनुकूलम। इसलिए टीका में देखो, कहा टीकाकार ने, ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते इति वदताम अस्माकम अनुकूलम। ये तो तुम्हारा कथन हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, क्योंकि हम भी जो है ब्रह्म तत्व की उपासना से मोक्ष होता है, ऐसा जो हम कहने वाले जो है उसी, इति वदताम अस्माकम, इति वदताम ऐसा तो हम बोल ही रहे, तो हमारे लिए वो अस्माकम अनुकूलम। ठीक है नहीं, ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मोक्ष जो है ज्ञान का साधन बन करके। इसलिए एकदम शुरुआत में यही तो कहा, उत्पादन द्वारा कहा कि नहीं मोक्ष होता है। तो इस तरह से आपको जो बीती बात है उसका स्मरण आपको दिलाया, इसलिए उपासना की परम आवश्यकता है। और 71वें श्लोक में जो है हिरण्यश्मश्रु इत्यादि जो है गुण भी बताए हैं उपासना के, उस गुण के साथ वो जो है ब्रह्म तत्व उपास्य है, ये बात भी आप लोगों ने सुनी। यद्यपि 9:30 तक चलना है, लेकिन आज थोड़ा सा वहां कार्यक्रम में पहुंचना है, अतः थोड़ा सा पहले ही बंद करते हैं।